الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم الى الاخر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورۃ المجادلہ کی آیات میں سے پہلی چھ آیات کو تو ہم مکمل پڑھ چکے معارف و مسائل کے ساتھ. تو ان کے اندر زہار کا مسئلہ ڈسکس ہوا تھا, کیونکہ جو صحابیہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں, ان کے شوہر نے ان کو ایسے الفاظ کہہ دیے تھے کہ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ تو جو ہے وہ میری ماں کی جیسی ہے, تیری پیٹ یا تمہاری پیٹ میرے ماں کی پیٹ کی جیسی ہے. تو اس طرح کے الفاظ کہہ دینے سے اس زمانے میں یعنی پرماننٹ سیپریشن ہو جاتی تھی بی بی اور شوہر کے درمیان. لیکن جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پوچھنے کے لیے گئیں, کیونکہ صحابہ پوچھ کے کام کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک شیخ عطا فرمائے تھے, ٹھیک ہے. تو اب یہ اس شیخ سے خالی دعائیں نہیں کرواتے تھے, وظیفے خالی نہیں پوچھتے تھے کہ فلانی بیماری ہو گئی ہے تو جی آپ کچھ پڑھ کے پھونک دیں, آپ کچھ وظیفہ بتا دیں, رائٹ, یا آپ جو ہے بس میرے لیے دعا کر دیں, اس کے آگے مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں رکھنی ہے, کوئی مشورہ نہیں کرنا ہے, پوچھنا نہیں ہے. ایسا صحابہ کرام نہیں کیا کرتے تھے, بلکہ صحابہ کرام جو بھی سچویشن آتی تھیں, حتیٰ کہ یہاں تک کہ قضاء حاجت کے لیے اپنے یعنی بستی سے باہر جاتے تھے لوگ, باتھ رومز وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے. تو ایک صحابی قضاء حاجت کے لیے کہیں باہر گئے تو وہاں پر جو بیٹھے تو دیکھتے ہیں کہ ایک چوہا دینار لے کر کے اپنے منہ میں آتا ہے اور ان کے سامنے لا کے چلا جاتا ہے, پھر دوسرا دینار, پھر تیسرا دینار, اس طرح 17 دینار لا کر کے اس نے ان صحابی کے سامنے ڈال دیے جب تک یہ فارغ ہو رہے تھے. تو جب وہاں سے نکلے تو ان 17 دینار کو لے کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے کہ بھائی جب پوچھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک میکینزم دیا ہے, ایک کمیونیکیشن چینل اوپن رکھا ہے, تو کیوں نہ پوچھیں ان چیزوں کے بارے میں جو کہ ہمیں پہلے سے معلوم نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا جن کے بارے میں ڈاؤٹ ہے. یہ خود بھی اپنا اجتہاد کر سکتے تھے نا, صحابی خود بھی اپنی عقل سے فیصلہ کر سکتے تھے کہ بھئی ہاں یہ دینار جو ہیں یہ تو بڑے اچھے ہیں اور جوئے نے لا کر کے دیے ہیں تو چلو میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے اس موقع پر اجتہاد نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ بتانے والے موجود تھے. اگر نہیں موجود ہوتے, مثال کے طور پر یہ صحابی اگر یمن میں ہوتے, جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو پوچھ کر کے بھیجا تھا نا کہ وہاں جاؤ گے تو تم کیسے فیصلے کرو گے, تو انہوں نے جواب دیا تھا نا کہ جی میں قرآن سے فیصلے کروں گا. اچھا, قرآن کے اندر اگر تمہیں حکم نہ ملے تو کیسے فیصلے کرو گے؟ تو پھر میں آپ کی سنت کو دیکھوں گا کہ آپ نے کیسے فیصلے کیے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اگر سنت میں بھی تمہیں کوئی ایسی چیز نہ ملے پھر کیسے فیصلے کرو گے؟ تو پھر میں اپنا اجتہاد کروں گا, پھر میں اپنا اجتہاد کروں گا, یعنی تھرڈ آپشن کے طور پر, ٹھیک ہے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ یمن والے جو یمن جا رہے تھے, یمن میں جا کر انہوں نے ایسا کام کرنا تھا. لیکن جب مدینہ منورہ میں ہیں تو مدینہ منورہ میں تو اجتہاد نہیں کرنا ہوتا نا, یا قرآن کو اٹھا کر کے اس میں سے فیصلے نہیں کرنے ہوتے خود سے, ٹھیک ہے. بلکہ مدینہ منورہ میں تو بتانے والے عالم موجود ہیں, معلم موجود ہیں, گائیڈ موجود ہیں, رائٹ, سب کچھ موجود ہے, تو ان سے کیوں نہیں پوچھیں گے؟ تو یہ ہے صحابہ کی سنت, یہ ہے صحابہ کی سنت, پوچھ کے چلنا, when you have the means to ask. اور ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو کوئی ایکسکیوز ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ نے واٹس ایپ دیا ہوا ہے, واٹس ایپ, رائٹ. یہ واٹس ایپ جو ہے نا کہیں قیامت کے دن ہمارے گلے نہ پڑ جائے, ٹھیک ہے. ایک تو گلے پڑنے کا کی سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ اس واٹس ایپ کے ذریعے سے ہم نے خرافات دیکھی, गंदगी चीज देख गंदी चीजें देखी और गंदी चीजें आगे फॉरवर्ड करी, नाजायज चीजें फॉरवर्ड करी, एक इस तरह से भी व्हाट्सएप गले पड़ सकता है। दूसरा, व्हाट्सएप के गले पड़ने की सूरत ये हो सकती है कि भाई व्हाट्सएप के ऊपर हम मुफ्ती साहब से पूछ सकते थे, शेख साहब से पूछ सकते थे, लेकिन हमने पूछा ही नहीं और अपना इज्तिहाद करते रहे, ठीक है, और इज्तिहाद करके फिर अपना काम खराब करते रहे, दूसरों का काम भी खराब करते रहे, तो पूछा क्यों नहीं भाई जब व्हाट्सएप के ऊपर जवाब देने वाले मौजूद थे, ठीक है, तो सहाबा जो है पूछ लिया करते थे। तो इसी तरह से इन सहाबिया ने जाकर के पूछा, और जब पूछा तो फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मालूम था वो बता दिया, और जो मालूम नहीं था उसके बारे में खामोशी इख्तियार करी। अल्लाह ताला सुन रहे थे इनकी गुफ्तगू को, तो अल्लाह ताला ने फिर कुरान की आयात नाजिल फरमा दी जो कि शुरू से 1 से लेकर 6 तक की आयात थी। अब उसके बाद मजमून बदल गया इस सूरत के अंदर, फिर एक डिफरेंट मजमून शुरू हुआ है जिसका के तर्जुमा हमने और शान नुज़ूल पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया था। आज हम खुलासा तफसीर इसका पेज नंबर 341 से पढ़ रहे हैं। तो फरमाते हैं कि पहली आयत की तफसीर में अलम तर अन्नल्लाह यालमु के, क्या आपने देखा ऐसे शख्स को कि बेशक, क्या आपने देखा कि बेशक अल्लाह ताला जानता है, या क्या तू नहीं देखता कि बेशक अल्लाह ताला जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। तो तफसीर में लिखते हैं कि आप क्या आपने इस पर नजर नहीं फरमाई, मतलब औरों को सुनाना है जो ममनू की हुई सरगोशी से बाज नहीं आते थे, ठीक है, कि अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, यानी बात अपने अपने रसूल से कर रहे हैं, क्या आपने इस पर नजर नहीं फरमाई। लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम इन आयात को पढ़ करके लोगों को सुनाएंगे ना, तो असल मकसूद जो है वो उनसे बात करना है, लेकिन बिलवास्ता बात फरमा रहे हैं, ठीक है, नबी के वास्ते से इन लोगों से बात कर रहे हैं। ये लोग कौन हैं कि जो ममगोशी से बाज नहीं आते थे, कि अल्लाह ताला सब को जानता है जो आसमानों में है और जो जमीन में है, इसलिए कि ये जो लोग होते थे नबी ये समझते थे कि नबी अलैहिस्सलाम को तो आवाज़ नहीं जाती होगी हमारी, ठीक है ना, ये तो इन्होंने मुशाहिदा भी किया होगा कि भाई दूर खड़े हुए आपस में बातें कर रहे हैं और नबी अलैहिस्सलाम को पता ही नहीं लग रहा कि बातें कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको याद दिलाया जा रहा है कि बेशक हमारे नबी अलैहिस्सलाम को आवाज़ नहीं जाती, लेकिन हमें तो आवाज़ आती है, जैसे कि खौला रज़ी अल्लाह अन्हा जब नबी अलैहिस्सलाम से बात कर रही थी, कद समिअ अल्लाहु, तो तहकीक अल्लाह ताला उनको सुन रहा था। तो जिस तरह खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सुन रहा था, ठीक है, उसी तरीके से तुम्हें भी सुन रहा होता है। ये रब्त आयात है, ठीक है, पिछली आयात जो कि यानी एकदम एक मुख्तलिफ मौजू पर थी ना, ज़िहार के मौजू पर, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अब ज़िहार का मौजू बिल्कुल ख़त्म हो गया और अब एक बिल्कुल नया मौजू शुरू हो गया और इन दोनों के दरमियान कोई रब्त नहीं है। लेकिन रब्त तो है, वो रब्त क्या है कि खौला रज़ी अल्लाह अन्हा की बातें भी सुनी थी और इनकी तुम्हारी बातें भी सुन रहे हैं, ठीक है, तो ये सुनना जो है सरगोशियों का, ये रब्त नजर आता है हमें। अच्छा, तो फरमाया कि इसी में इनकी तनाजी यानी सरगोशी भी दाखिल है, ठीक है, तनाजा का आपको बताया था कि खुफिया मशवरा को कहते हैं। तो कोई सरगोशी 3 आदमियों की ऐसी नहीं होती जिसमें चौथा वो यानी अल्लाह ताला ना हो, और ना 5 की सरगोशी होती है जिसमें छठा वो ना हो, और ना इस अदद से कम में होती है जैसे 2 या 4 आदमियों में, और ना इससे ज़्यादा में होती है जैसे 6, 7 या ज़्यादा आदमियों में, मगर वो हर हालत में उन लोगों के साथ होता है, ठीक है। अब ये जो ये है ना कि वह हुआ इल्ला हुआ माहुम ऐना मा कानू, ठीक है, तो इसके तहत जो है 2 क्लास पहले जब हम इस आयत की का तर्जुमा पढ़ रहे थे तो एक थोड़ी डिस्कशन हुई थी क्लास के अंदर। मैं बस ये देख रहा हूँ कि जिन हजरात ने उसके बाद सवाल किया था तो वो क्लास में मौजूद हैं कि नहीं। एक तो मौजूद हैं, नज़र आ रहे हैं, बाकी दूसरे साहब जो हैं वो गालबन कहीं और मसरूफ़ होते हैं इस टाइम पर, तो वो नहीं है, चले शायद वो बाद में रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात हुई थी कि अल्लाह ताला कहाँ है, ठीक है, तो उसके ऊपर ना इस आजिज़ ने कहा था कि अल्लाह ताला जो है वो अर्श पर है, इस्तवा अलल अर्श, ठीक है। तो अब इसके ऊपर ना एक अच्छी खासी लंबी अकीदे की डिस्कशन है, ठीक है, जो कि पहले मैंने एक्चुअली इस तरह से सुनी नहीं थी, ठीक है, वेरी फ्रेंकली, कि इसके ऊपर जो मौलाना इलियास घुमन दामन पकातों में, ठीक है, तो उन्होंने ना इसके ऊपर अच्छी खासी यानी लेक्चर्स दिए हैं कि अल्लाह ताला कहाँ है, ठीक है, तो वो मेरे इल्म में नहीं था। تو اس وجہ سے نا میں نے صرف اتنا ہی کلاس کے اندر مینشن کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش پر ہیں, استوى علی العرش, جیسے کہ قرآن کی آیت سے بھی پتہ لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کے اوپر کچھ ساتھیوں نے پھر ان کی وہ جو ٹاکس تھیں وہ میرے ساتھ شیئر کریں, تو ان کو غور سے سنا اور بات کو اوور آل سمجھنے کی کوشش کری. تو اس وجہ سے نا اس کو پھر آپ کے سامنے تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ جو ہمارے اکابرین اہل سنہ والجماعت کے ہیں, جن میں کہ پرائمری جو ہیں وہ اکابرین علماء دیوبند کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, علماء دیوبند کا مطلب صرف دیوبند کے مدرسے سے فارغ لوگ نہیں, بلکہ جو عقیدہ اہل سنہ والجماعت کا علماء دیوبند فالو کرتے ہیں نا, اس عقیدے کو جس بھی مدرسے کے طلباء اور اساتذہ فالو کریں, وہ سارے ہی علماء دیوبند کہلاتے ہیں, چاہے وہ کبھی بھی دیوبند نہ گئے ہوں, حتیٰ کہ چاہے دیوبند کے کسی فارغ عالم نے کبھی بھی ان کو نہ پڑھایا ہو. مثال کے طور پر انڈیا کے اندر ایک اور بڑا مدرسہ ہے دیوبند کے قریب ہے, وہ اس کا نام ہے مظاہر العلوم. ٹھیک ہے, مظاہر العلوم جو ہے یہ بالکل دیوبند کے لیول کا مدرسہ ہے, بالکل سیم آلموسٹ کلاس کا مدرسہ ہے وہ. ٹھیک ہے, تو یہ ایسا نہیں ہے کہ دیوبند سے جو فارغ ہوتے ہیں انہوں نے مظاہر العلوم کو بنایا تو اس وجہ سے یہ مظاہر العلوم بھی دیوبندی مدرسہ ہے, نہیں, بلکہ مظاہر العلوم تو آلموسٹ پار کا مدرسہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن مظاہر العلوم سے جو بھی فارغ ہوتا ہے یا جو بھی وہاں پہ پڑھتا ہے نا, اس کو بھی عقیدے کے اعتبار سے دیوبندی ہی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اٹس ناٹ جسٹ کہ دیوبند کے فارغ اگر کسی کو پڑھائیں تو وہی دیوبندی ہوتا ہے, بلکہ اس کا تعلق ایک فکر سے ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, تو اکابر علماء دیوبند کا جو سمجھ ہے نا عقیدے کے اندر, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالی کی ذات ہر جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ہر جگہ موجود ہے اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. ٹھیک ہے, وہ کیسی, وہ کیا تفصیل ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات جو ہے نا وہ ہر جگہ موجود ہے. کہتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات کی کوئی لمٹ نہیں ہے, لا متناہی ہے, لمٹ لیس. ٹھیک ہے, تو جب لمٹ لیس ہے, وداؤٹ اینی لمٹس ہے, تو اب آپ اس کو لمٹ نہیں کر سکتے کہ یہ صرف عرش کے اوپر ہے. اس لیے کہ اگر آپ کہیں گے کہ صرف عرش کے اوپر ہے تو آپ اس کو لمٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ از انلمیٹڈ. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے نا یہ جو ذات کا کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے. لیکن یہ ذات ہر جگہ موجود کیسے ہے, ہاؤ؟ ٹھیک ہے, اس کے اوپر تفصیل یہ ہے کہ بے کیف ہے, بلا کیف. ٹھیک ہے نا, بلا کیفیت, یعنی جس اس طرح سے ہے کہ جس کو کہ ہم تصور نہیں کر سکتے, ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, اس کی کوئی فزیکل فارم نہیں ہے, جیسا کہ ہم فزیکل فارم کو سمجھتے ہیں نا, وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وداؤٹ فزیکل فارم ہے. اس کو ایکچولی سمجھنا اس طرح سے بھی آسان ہو جاتا ہے, ابھی اللہ نے دل میں بات ڈالی ہے اس لیے. ٹھیک ہے, کہ بھائی فزیکل فارم کیا چیز ہوتی ہے, جس کو کہ ہم سائنس میں پڑھتے ہیں نا, کیا ہوتی ہے فزیکل فارم؟ سالڈ, لیکوڈ, گیسز, اس کو میٹر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دنیا کے اندر یہ میٹر جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے, ہے نا جی, سائنس یہی کہتی ہے نا, اور ہمارا جو مشاہدہ ہے, ہمارے جو مائکروسکوپس ہیں, یہ سارے یہی کہتے ہیں نا کہ جی ہر جگہ کوئی نہ کوئی میٹر کے مالیکیولز موجود ہیں. ٹھیک ہے, سالڈ کا مالیکیول موجود ہوگا اگر سالڈ ہے, اگر سالڈ نہیں ہے تو لیکوڈ کا تو ہوگا, پانی یا کسی اور قسم کا لیکوڈ. اور اگر کہیں پہ سالڈ اور لیکوڈ دونوں کے مالیکیولز نہیں ہیں تو پھر تیسری کیا چیز بچ جاتی ہے؟ گیسز. گیسز ہر جگہ موجود ہیں. ٹھیک ہے نا, تو گیسز بھی تو ایک میٹر کی قسم ہوتی ہے نا, اور میٹر کے جو ہوتے ہیں وہ ایٹمز ہوتے ہیں, مالیکیولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کے اندر نیوٹرونز ہوتے ہیں, پروٹونز ہوتے ہیں, یعنی کوئی ویکیوم تو نہیں ہے نا کہیں بھی. ٹھیک ہے نا, خلا تو نہیں ہے یہاں پہ کہیں بھی, کہیں یعنی کچھ نہ کچھ موجود ہے. تو اب جب کچھ نہ کچھ موجود ہے تو کیا ہمارا اس بات پر عقیدہ نہیں ہے کہ فرشتے وہ آتے ہیں دنیا کے اندر جان نکالنے کے لیے؟ تو آتے ہیں نا, سب کو پتا ہے نا کہ جی جان نکالنے کے لیے فرشتے صاحب آتے ہیں, بلکہ فرشتے ایک نہیں آتے, قرآن سے تو ثابت ہے کہ پوری ٹیم آتی ہے ان کی, رائٹ. ملک الموت تو صرف بس اندر سے نکال کر کے, ہمارے جسم سے ہماری روح کو نکال کر کے پھر ٹیم کے حوالے کر دیتے ہیں. اب ٹیم اس کو لے کر کے جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس, پوری ٹیم فرشتوں کی. تو भाई ये टीम जो है वो कहां से माती है, राइट? जब कोई जगह खाली ही नहीं है, हर जगह जो है वो गैस मौजूद है, कम से कम एयर मौजूद है, एयर जो है वो इट्स लाइक उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो जब हर जगह कुछ ना कुछ मौजूद है तो फिर ये फरिश्ते किधर से आते हैं, ये कहां से आ जाते हैं, राइट? तो फरिश्तों का जो आना है ये कैसे होता है, वी डोंट नो, बिला कैफ, कैसी उनकी कैफियत होती है हमें पता ही नहीं, इसलिए कि वो रूहानी दुनिया की मखलूक है, हमारे वहम व गुमान में उनका तसव्वुर नहीं, कैसे होता है ये सब कुछ, ठीक है? तो जब हम फरिश्तों तक को नहीं समझ सकते, हम फरिश्तों की मौजूदगी को नहीं एक्सप्लेन कर सकते साइंटिफिकली, साइंटिफिकली हम फरिश्तों की मौजूदगी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तो फरिश्तों के भी खालिक हैं, राइट? पूरी कायनात के खालिक हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। लैसा बिमिस्लिही शै, अल्लाह ताला की मिसल कोई भी चीज नहीं है जिसको कि हम तसव्वुर कर सके ना, इमेजिन कर सके, कोई चीज अल्लाह के जैसे नहीं है। तो इस वजह से चूंकि बस अल्लाह ताला की कोई इंतहा नहीं है ना, कोई लिमिट नहीं है ना, इस वजह से अल्लाह ताला की जात हर जगह मौजूद है, लेकिन वो कोई फिजिकल फॉर्म में मौजूद नहीं है, जिस्म की शक्ल में मौजूद नहीं है, ठीक है? तो इस वजह से ना जो हमारे उलमा है ना, वो लोगों की समझ के मुताबिक चूंकि बात करते हैं, तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का उन्होंने पूरा इबारत पढ़ करके सुनाई थी उस टॉक के अंदर, तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने पहले तो ये बात इस्टेब्लिश करी कि अल्लाह ताला की जात हर जगह मौजूद है लेकिन बिला कैफ, विदाउट कैफियत। जैसे कोई हाफिज साहब हैं, वो कुरान को हिफ्ज कर लेते हैं तो कहते हैं कि जी कुरान मेरे सीने में महफूज है। अच्छा जी, कुरान आपके सीने में महफूज है, ठीक है जी, तो अब आप जो है जब बाथरूम जाते हैं तो क्या आप कुरान अपने सीने से निकाल करके जाते हैं? क्योंकि बाथरूम में तो आप कुरान नहीं लेके जा सकते, कुरान की बेद भी है, ठीक है ना? तो वो हाफिज साहब जो है ना, वो इस बात के ऊपर क्या कहते हैं, नहीं जी मैं तो कुरान अपने सीने से निकाल के तो नहीं जा सकता, तो फिर आप कुरान की बेद भी करते हैं, नहीं जी मैं बेद भी तो नहीं करता, तो फिर कुरान आपके सीने में मौजूद भी है और आप बाथरूम भी चले जाते हैं उसके साथ, ठीक है? तो उसका जवाब क्या देंगे कि भाई कुरान अपने जिस्म के बगैर मौजूद है, उसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है मेरे सीने के अंदर कि मैं उसको लेकर के बाथरूम में चला जाता हूँ, राइट, या उसको निकाल करके बाहर छोड़ करके जाऊं, वो बिला कैफ मौजूद है ना मेरे सीने के अंदर, ठीक है? तो भाई बिला कैफ का ये कॉन्सेप्ट होता है, तो अल्लाह ताला भी बिला कैफ मौजूद है और उस यानी उसको हम समझ नहीं सकते। अलबत्ता जो बहुत ही कम अकल के लोग होते हैं, अकल की लेवल्स होते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लेवल्स होते हैं, आप लोग माशाल्लाह चूंकि कॉलेज एजुकेटेड हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेटेड हैं और खूब सारे जो है ना वो दुनियावी मामलात के अंदर बड़ी जबरदस्त तदबीर रखते हैं, ठीक है? तो आप लोगों से तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि आपको ये अब तक जो चीज बताई गई है ये समझ में नहीं आ रही हो। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं जो कि बिल्कुल ही सादा किस्म के, जिन्होंने बस दिन भर में एक काम करना होता है, कोई आगे पीछे का वो काम समझ नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, ऐसे अल्लाह ताला ने लोग बनाए, उनकी भी एक एक, एक उनकी भी एक इम्पोर्टेंस होती है, इंसानी मुआशरे के अंदर जरूरत होती है उनकी, ठीक है? तो उनके साथ आप सारी डिस्कशंस नहीं कर सकते ना, तो उनकी समझ की खातिर हमारे उलमा ने, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बकायदा फरमाया है कि जिसकी ये बात समझ में ना आए ना कि अल्लाह की ज़ात बिला कैफ हर जगह मौजूद है, तो बस उसके लिए इतना ही काफ़ी है, उसको बता देना कि अल्लाह ताला तो अर्श पर है और बाकी जगह वो अपने इल्म के साथ है, अल्लाह ताला का इल्म हर चीज पर मुहित है, ठीक है? जातवाद की बात उसके सामने ना करें, वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, ठीक है? तो जात की बात ही ना करें उसके लिए, उसके सामने, ठीक है? तो अब जो है ना, ये एक अकीदे की डिस्कशन है, ठीक है? और हमारा जो जो मकसद है या हमारा जो एरिया है, हमारा जो सब्जेक्ट है, वो अकीदा एज सच नहीं है, यहाँ पर इतना ज्यादा है, थोड़ा बहुत यानी अकीदे की डिस्कशन हम करते हैं जीन एसेंशियल्स क्लास के अंदर, जितना अकीदा जो है वो एक आम आदमी को मालूम होना चाहिए, ठीक है? लेकिन हमारा मेन सब्जेक्ट अकीदा नहीं है, जबकि मौलाना इलियास घुमन दामद बरकातुम जो है उनका तो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज ही अकीदा है, ठीक है? और वो ये डिस्कशंस करते क्यों हैं, वो ये डिस्कशंस इसलिए नहीं करते ताकि अपनी इल्मियत लोगों पर झाड़ें या उन लोगों को जो है वो इस किस्म की बहस के अंदर उलझाएं, वो मकसद ही नहीं है उनका ये करने का, ठीक है? मकसद उनका क्या है, सिर्फ जो गलत अकीदे वाले लोग हैं, जो लोगों को कंफ्यूज करते हैं और कंफ्यूज करके फिर जो लोगों के उलमा मौजूद होते हैं ना, उन उलमा से बदजन करते हैं कि तुम्हारे उलमा ने तो तुम्हें कुछ बताया ही नहीं, या तुम्हारे उलमा जो अकीदा तुम्हें अब तक पढ़ाते आ रहे हैं ना, उसकी तो कोई दलील ही उनके पास नहीं है, उन्होंने तो अपनी तरफ से बातें बना ली हैं, कुरान और हदीस से कोई दलील उनके पास है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये जो बदजन करने वाला काम करते हैं ना लोग, तो उन बदजन करने वालों को जवाब देने के लिए ये सारी डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। यानी ये डिस्कशन जो है ये एक जवाबी डिस्कशन होती है अवामुन्नास में जो की जाती है, ताकि अवामुन्नास अपने उलमाए कराम से बदजन ना हो, यानी बताया जा सके अवाम को कि देखें हमारे उलमा ने जो हमें बातें बताई हैं ना वो ऐसी कॉन्कॉक्टेड किस्म की बातें नहीं है, तसव्वुराती बातें नहीं है, बल्कि उनके पीछे अकली और नकली दोनों दलीलें मौजूद हैं। इस वजह से आप अपने उलमा से बदजन होकर के उनसे अपना ताल्लुक खत्म ना करें। यह है मकसद मौलाना इलियास घुमन साहब का, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं अपनी तरफ से झाड़ना जिसको कहते हैं और धाग बिठाना लोगों के ऊपर, ये मकसद नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी जो तफसीली डिस्कशन है ना अकीदे के बारे में, ये डिस्कशन सहाबा कराम ने कभी करी नहीं थी, बिल्कुल नहीं करी थी, ठीक है ना। कि अल्लाह ताला का हाथ कैसा है, अल्लाह ताला का चेहरा कैसा है, अल्लाह ताला की साख कैसी होती है, ठीक है, ये सारी डिस्कशन सहाबा कराम ने तो कभी करी नहीं थी। तो इस वजह से ताबईन ने भी नहीं करी, तबा ताबईन ने भी नहीं करी। लेकिन उस जमाने में भी जब लोगों ने यूनानी फलसफा पढ़ा और उनके दिमाग के अंदर शयातीन के ख्यालात सुमोने शुरू हुए ना, तो उस जमाने के लोगों ने भी इसी तरीके से अकीदे के ऊपर ना नए नए अपने अंडरस्टैंडिंग्स पेश करनी शुरू कर दी लोगों के सामने, ठीक है। और यानी अच्छी खासी जो है ना वो सिरात मुस्तकीम से हट कर की बातें करनी शुरू करी। तो उन लोगों को जवाब देने के लिए फिर जो मुतकल्लिमीन उलमा थे उन्होंने फिर अकीदे की बातों को अवाम के सामने खोलना शुरू किया, ताकि उन लोगों जो गलत लोग थे उनकी गलत बातों का तोड़ किया जा सके, ठीक है। तो ये एक रिस्पॉन्सिव किस्म की डिस्कशन है अकीदे की तफसीलात जो है ना, ये कोई यानी ऐसी नहीं है कि हर मुसलमान को इन सारी डिटेल्स का पता होना जरूरी है, अगर नहीं जरूरी होगा तो फिर वो मुसलमान नहीं रह सकता, ठीक है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये गलत अकायद के रास्ते को बंद करने के लिए डिस्कशंस की जाती हैं। तो वो जो डिस्कशंस कर रहे हैं ना, ये वो इस नियत से कर रहे हैं और वो हक बजाने पे, ये उनका ये एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, हमारा तो ये एरिया ही नहीं है। हमने तो बस बुनियादी लेवल के अकायद जो है वो आप लोगों को बता देने होते हैं, और हमारा असल मकसूद क्या होता है कि हमने तो कुरान की अजमत, अल्लाह ताला की अजमत जो है वो बयान करनी है, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स के सामने, ताकि हमारे दिल से दुनिया की मोहब्बत कम हो, राइट, दुनिया की मोहब्बत कम हो, दुनिया वालों की अजमत कम हो और अल्लाह उसके रसूल उसके कुरान की अजमत बढ़े। तो जब हम इस तरह इस नीयत से बात करते हैं ना, तो अब हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं चीजों को कि भाई अल्लाह ताला कितने बड़े हैं, उसको जरा हम तसव्वुर करें कि जितनी मखलूकात अल्लाह ताला ने बनाई है, अल्लाह ताला का अर्श जो है वो उन सब पर मुहित है, दुनिया के ऊपर और जितनी जो नॉन फिजिकल वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड है, वो सारी की सारी एक आलम खल्क कहलाती है। उस आलम खल्क के बाद आलम अमर शुरू होता है, जिसके अंदर 7 आसमान आते हैं, जन्नत आती है और उसके बाद फिर अल्लाह ताला का अर्श आता है, अल्लाह ताला उससे भी बड़े, राइट, अल्लाह ताला के अर्श की अल्लाह ताला के सामने कोई हैसियत नहीं है, इतने बड़े अल्लाह ताला। तो इतने बड़े अल्लाह ताला को छोड़ करके हम जो है वो अल्लाह ताला के दुश्मनों से मरूब होते रहते हैं, राइट, गैरों से मरूब होते रहते हैं, उनसे डरते रहते हैं। तो हमारा तो ये एरिया है ना, हमारा एरिया जो है वो तो अकीदे की डिटेल्स है ही नहीं। तो इस वजह से आपके सामने जो बयान किया था तो उसके अंदर अच्छा खासा झोल था, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे उन लोगों को कि जिन्होंने फिर उसकी इस्लाह की तरफ निशानदेही फरमाई, तो फिर आपके सामने थोड़ी और बात उससे मुतालिक रख दी कि अल्लाह ताला की मौजूदगी का क्या अकीदा है उलमा-ए-अहलुस्सुन्नत वल-जमात के नज़दीक, कि अल्लाह ताला की ज़ात हर जगह मौजूद है लेकिन बिला कैफियत है, ठीक है। और इसकी वजह, ये अकीदा बयान करने की वजह क्या है कि चूंकि अल्लाह ताला की ज़ात को हम मुकय्यद नहीं कर सकते, ठीक है, लिमिट नहीं कर सकते, वो लामुतनाही है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो इस वाले आयत का तर्जुमा हो गया जिसको कि हम खुलासा तफ़सीर पढ़ रहे थे कि मगर वो हर हालत में उन लोगों के साथ होता है, ख्वाह वो लोग कहीं भी हों, پھر ان سب کو قیامت کے روز ان کے کیے ہوئے کام بتلا دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر بات کی پوری خبر ہے۔ ٹھیک ہے، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم۔ اچھا، اس آیت کا مضمون بعنوان کلی اگلے مضامین جزئیہ کی تمہید ہے، یعنی یہ ایک تمہید اللہ تعالیٰ باندھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب اگلے جو مضامین شروع ہونے نا وہ کیا ہے کہ یعنی یہ ایذائے مسلمین کے لیے باطل سرگوشی کرنے والے، یہ جو منافقین ہیں نا جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے بری سرگوشیاں کرتے تھے، وہ خدا سے ڈرتے نہیں کہ خدا کو سب خبر ہے اور ان کو سزا دے گا۔ آگے وہ جزوی مضامین ہیں، یعنی اب یہ نیکسٹ ڈسکشن شروع ہو رہی ہے، یعنی الم ترى الى الذين نهوا عن النجوى، کہ کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جن کو کہ منع کیا گیا تھا ان خفیہ یعنی مشورے کرنے سے، ثم يعودون لما نهوا عنه، پھر وہ لوٹتے ہیں اسی چیز کی طرف جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، وتناجون، اور وہ خفیہ مشورے کرتے ہیں، بالاثم والعدوان ومعصیت الرسول، گناہ کے اور زیادتی کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کے، واذا جاؤوک، اور جب آپ کے پاس وہ آتے ہیں، یحیوک بما لم یحیک به اللہ، تو وہ آپ کو ایسے گریٹ کرتے ہیں جیسے اللہ نے آپ کو گریٹ نہیں کیا، ویقولون فی انفسہم، اور پھر اپنے آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں، لولا یعذبنا اللہ بما نقول، کہ اللہ تعالی ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا اس وجہ سے جو کہ ہم نے ان باتوں کی وجہ سے جو ہم نے کہی ہیں، حسبہم جہنم، ان کے لیے تو جہنم کا عذاب کافی ہے، یسلونہا، ڈالے جائیں گے یہ اس کے اندر، فبئس المصیر، کتنا برا ٹھکانہ ہے وہ ان کا۔ ٹھیک ہے، تو اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کیا آپ نے لوگوں پر نظر نہیں فرمائی کہ جن کو سرگوشی سے منع کر دیا گیا تھا مگر پھر بھی وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے ان کو منع کر دیا گیا تھا، اور گناہ اور ظلم اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، یعنی ایسی سرگوشی کرتے ہیں کہ جس میں بوجہ منہا عنہ ہونے کے خود بھی گناہ ہے، کیونکہ اس سرگوشی سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ تو اب یہ سرگوشی اگر جسٹ فار دا سیک آف سرگوشی کریں نا اور کچھ بھی نہ کریں پھر بھی یہ گناہ ہے کیونکہ اس سے منع کیا گیا تھا ان کو، تو یہ خود بھی گناہ ہے اور مسلمانوں کو غمگین کرنے کی وجہ سے عدوان یعنی ظلم بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایکسس بھی ہے اس کے اندر، کیونکہ خاص ان کے اندر ایک شر کی نیت ہوتی ہے مسلمانوں کو پریشان کرنا، اور بوجہ اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما چکے تھے، رسول کی نافرمانی بھی ہے جیسا واقعہ اول اور دوم میں بیان ہوا۔ ٹھیک ہے، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ایسے لفظ سے سلام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام نہیں فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کے الفاظ تو یہ ہیں، سلام علی المرسلین، سلام علی عباده الذین اصطفى، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، رائٹ، صلوات اور سلام آپ کے اوپر ہے سلامتی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو یہ انداز ہیں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام پر سلامتی بھیجنے کے، اور یہ لوگ کیا استعمال کرتے ہیں، السام علیکا، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے اوپر موت ہو، سام جو ہے وہ موت کو آگے آ رہا ہے اس کی تفسیر۔ ٹھیک ہے، تو اب بہترین طریقہ کیا ہے، وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی کے ہی الفاظ استعمال کرنے چاہیے ایک دوسرے کو، ایون ہمیں بھی گریٹ کرنے کے لیے، جب اتنا بہترین گریٹنگ کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کو چھوڑ کر کے ہیلو، ہاؤ آر یو ڈوئنگ، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ بائے، رائٹ، یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، چلیں جی اللہ حافظ تو ٹھیک ہے بھائی، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، تو یہ آپ یہ دعا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ حافظ کے بجائے اگر السلام علیکم کہہ دیں تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ حافظ تک تو بات چلتی ہے، لیکن گڈ مارننگ وغیرہ تو یعنی اب ٹو مچ ہو گیا نا یہ تو۔ بہرحال، تو فرماتے ہیں کہ اپنے جی میں یا اپنے آپس میں کہتے ہیں کہ اگر یہ پیغمبر ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے اس کہنے پر، جس میں سراسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی ہے، یعنی اللہ کے رسول ہیں اور ہم اللہ کے رسول کی بیعت بھی کر رہے ہیں، ان کو پتہ تھا یہ بات، تو اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو پھر کس قسم کے رسول ہیں کہ اللہ تعالیٰ سزا کیوں نہیں دیتے فوراً ہمیں ان کی بیعت بھی کرنے کے اوپر۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ اپنی طرف سے نا امیجنری یہ خیالات ہوتے ہیں کہ خود ہی سے جو ہے نا وہ فیصلہ کر لیا کہ اگر اللہ کے رسول ہیں تو ان کی بیعت بھی پہ فوراً سزا مل جانی چاہیے۔ ٹھیک ठीक है, तो अल्लाह ताला ऐसा नहीं करते ना कि फौरन सजा दे दें, उसमें अल्लाह ताला की बड़ी हिकमतें होती हैं फौरन सजा ना देने के अंदर। ठीक है, तो इसकी तफसीर में लिखते हैं कि जैसा वाकया सोम चहारों में गुजरा, ये वाकया सोम चहारों वगैरह क्या है जो हमने पिछली क्लास के अंदर वो पढ़ी थी, असबाब नुजूल जो पढ़े थे ना, शान नुजूल, दो पेज पीछे शान नुजूल, तो उसके अंदर पहला वाकया, दूसरा वाकया, तीसरा वाकया जो सब इन आयात का शान नुजूल बन रहा था, तो अब ना उन उनको नंबर दे दे करके यहाँ पे रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो वाकया सोम और चहारुम क्या था वो अगर आप पिछले बराबर वाले पेज के ऊपर देखना चाहें तो देख लीजिएगा, अभी मेरे सामने टाइम ज्यादा लग जाएगा तो अभी आगे चलते हैं कि आगे इनके इस फेल की वईद और इस कौल का जवाब है कि जल्दी अजाब बाज हिकमतों के सबब ना आने से मुतलकन अजाब ना देना लाजिम नहीं आता। ठीक है, जैसे आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत वाला मामला, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान अपने आप को कहता है समझता है राइट, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब पर तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुत्तफिक हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किन का अदब आता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वरसा का अदब, ठीक है, यानी उलमा और मशाइख का अदब। ठीक है, तो उलमा और मशाइख की कौन सी हम अदब करते हैं भाई, राइट? हमारे दरमियान कितने ऐसे लोग हैं क्योंकि जो कि उलमा और मशाइख को बहुत बुरा भला कहते हैं, पहले तो सिर्फ उलमा को बुरा भला कहते थे, अब तो मशाइख भी उसकी लपेट में आ गए। ठीक है, तो आजकल तो ये माशाल्लाह, अल्लाह माफ करे, आजकल तो ये यानी सर चढ़ करके उलमा की बेअदबी और बहुत ही बुरे अलकाबात, गालियां और नाउज बिल्ला ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं उलमा के लिए, राइट? तो अब इनके ऊपर अदाब क्यों नहीं आ रहा? तो क्या ख्याल है, जरा तसव्वुर करें ना, अभी जरा तसव्वुर कर लें, ऐसी बस तसव्वुर की निगाह से समझने की खातिर, ठीक है, कि जैसे कि हम उसी दौर के अंदर हैं। ठीक है, उस दौर के अंदर मुअल्लिम कौन थे? ठीक है, वो नबी अलैहिस्सलाम सलाम थे, ठीक है ना, और नबी अलैहिस्सलाम सलाम के साथ बेअदबी करने वाले, नबी अलैहिस्सलाम सलाम को बुरा कहने वाले, ठीक है ना, वो उस दौर के अंदर बुरा कह रहे होते थे, जैसे आज नबी अलैहिस्सलाम सलाम के वरसा को जो लोग बुरा कह रहे हैं। ठीक है, तो अब वरासा तो सबके होते हैं ना, तो नबी अलैहिस्सलाम सलाम के वरासा कौन है? उलमाए कराम है, और बुरा भला कर कहने वालों के वरासा कौन है? जो कि आज बुरा भला कह रहे हैं, ठीक है ना, बिकॉज वो अपना काम कर रहे हैं, नबियों के रास्ते का काम, ठीक है, जो नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने किया उस तरह का काम करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इज्तिहाद के मुताबिक। ठीक है, और दूसरे उलमा उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में उलमा उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो इनको गालियां देने वाले लोग हैं वो भी तो किसी के वारिस बनते हैं ना, राइट? तो वो वारिस किसके बनते हैं? उलमा को की बेअदबी करने वालों के वारिस बनते हैं। ठीक है, उलमा के तो वारिस नहीं बन सकते ना ये लोग, कि नहीं जी ये हम जो उलमा को जो गालियां दे रहे हैं तो हम भी उलमा की विरासत में ही गालियां दे रहे हैं उनको, राइट? कोई तुक बनती है इस बात की? ठीक है, तो ये तो उन्हीं के वारिस बन रहे हैं ना, मुनाफिकीन के वारिस। ठीक है, तो अब जहन में सवाल आ सकते हैं ना कि अगर उलमा की अल्लाह ताला के नजदीक इतनी अहमियत है, राइट, अल्लाह ताला ने उलमा को इतना बड़ा मुकाम दिया है, जैसे हदीसों से हमें पता लगता है कि एक आलिम की आबिद के ऊपर क्या फौकियत होती है, जैसे मेरी फौकियत तुम में से सबसे अदना के ऊपर है, राइट? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ना कि आलिम जो है वो किसी आबिद के मुकाबले में, इबादत गुजार मुसलमान के मुकाबले में इतना बड़ा है कि जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सबसे अदना सहाबी से ज्यादा बड़े होते थे, इतना डिफरेंस है। ठीक है, तो उलमा की शान में तो बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं, हत्ता कि जो कुरान की आयत भी आने वाली है, इसी में आने वाली है, दूसरी सुबह वाली सूरत में, खैर हाँ इसी में आने वाली शायद। ठीक है, तो अब इतने बड़े जब हैं ये उलमाए कराम, तो अब एक सिंपल प्लेन लॉजिक तो ये आती है ना जहन में कि बेअदबी करने वालों के ऊपर अल्लाह का अजाब आ जाना चाहिए, यानी कोई चीख आ जानी चाहिए, कोई जलजला आ जाना चाहिए, कोई जो है वो तूफान आ जाना चाहिए जिसमें ये गर्क हो जाए सारे के सारे, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। ठीक है, बल्कि खूब खुल करके कर रहे हैं, राइट? और सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक तूफान बदतमीजी गर्म किया हुआ है सबने। ठीक है, अजाब क्यों नहीं आ रहा भाई? तो ये देखें, कुरान की आयात हमारे लिए हिदायत है, ये किस्से कहानियां तो नहीं है कि उस जमाने में ऐसा सब कुछ होता था भाई, आज जो हमारे जमाने में हो रहा है तो उसके अंदर हमारे लिए ये गाइडेंस है कि क्यों नहीं अदाब आ रहा। तो जवाब मिल रहा है ना सामने हमें, जवाब में क्या कहते हैं, यानी क्या जवाब मिल रहा है कि जल्दी अजाब बाज हिकमतों के सबब ना आने से مطلقاً عذاب نہ دینا لازم نہیں آتا. ٹھیک ہے, عذاب تو آئے گا, ٹھیک ہے, جو کر رہے ہیں نا یہ سب عذاب تو ان کے اوپر آئے گا, بلکہ آلریڈی آ بھی رہا ہے, لیکن ایک دوسری شکل میں آ رہا ہے کیونکہ دین سے یہ دور ہو رہے ہیں. میں پرسنلی جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں نا, پہلے بھی دین سے دور ہی تھے, لیکن اب ان کی دوری جو ہے اور بڑھ گئی ہے. مولویوں کو تو آپ رکھیں سائڈ پر, جو چیزوں جن چیزوں کو یہ خود بھی مانتے ہیں کہ یہ دین ہے, رائٹ, ان کی بھی جو پابندی پہلے تھی نا وہ پابندی بھی ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, یعنی حرکتیں ایسی ہیں کہ بری طریقے سے یہ گناہ کے دلدل میں پھنسے چلے جا رہے ہیں, لیکن اپنے اس عمل کے اوپر کوئی خیال نہیں ہے, کوئی توجہ نہیں ہے, اور علماء کے اوپر گالیوں کا سلسلہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو عذاب تو چل رہا ہے نا, عذاب کی طرف تو دھکیلے جا رہے ہیں, مانے یا نہ مانے دھکا تو ان کو دیا جا رہا ہے عذاب کی طرف. ہاں, جو موت والا عذاب ہوتا, دعا تو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں, اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی عذاب کے اندر مبتلا ہو. ٹھیک ہے نا, چاہے جائے کہ ہمارے اپنے رشتہ دار, ہمارے اپنے عزیز, ہمارے اپنے دوست, کون چاہتا ہے کہ وہ عذاب اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو, رائٹ. تو اس وجہ سے دعا تو کرتے رہتے ہیں, کر بھی رہے ہیں, اور ابھی بھی موقع تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بات سمجھانے کی کوشش کر لیں. ٹھیک ہے, لیکن دور بھاگتے ہیں, پہلے بھی دور بھاگتے تھے, پہلے بھی قریب نہیں آتے تھے. اگر پہلے قریب آ جاتے تو آج یہ نوبت نہ آتی, رائٹ, آج یہ اس قسم کے نا اس دلدل کے اندر نہیں گر رہے ہوتے اگر یہ پہلے قریب آ جاتے جب اس قسم کے مسئلے شروع ہی نہیں ہوئے تھے. اب تو ایسے مسئلے شروع ہو چکے ہیں کہ اب انہوں نے کیا آنا ہے, اب بظاہر تو کوئی امید نہیں لگتی کہ اب یہ آئیں گے, رائٹ, حالانکہ گروپ کے اندر موجود ہیں, الرٹس ملتے ہیں, لیکن کلاس ایک بھی نہیں لی, ایک بھی کلاس نہیں لی. ٹھیک ہے, تو جب اچھے دور کے اندر ایک بھی کلاس نہیں لی, تو جب یہ ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو چکا ہے تو اب کیا کلاس لیں گے بھائی. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھی امید تو ہم رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے, اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ اچھا خیر. تو آگے کہتے ہیں کہ ان کی سزا کے لیے جہنم کافی ہے, تو اس میں یہ لوگ ضرور داخل ہوں گے, سو وہ برا ٹھکانہ ہے. آگے ایمان والوں کو خطاب ہے کہ جس سے منافقین کے ساتھ مشابہت کرنے سے ان کو بھی ممانعت کی گئی ہے, اور منافقین کو بھی سنانا منظور ہے کہ تم تو مدعی ایمان کے ہو, مدعی ایمان کے ہو تو مقتضائے ایمان پر عمل کرو. ٹھیک ہے, تو کیا ہے یہ آیات کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم, کہ جب تم آپس میں کبھی اس طرح سے نا ذرا سرگوشی کے انداز میں بات کیا کرو نا, تو تم گناہ والی سرگوشی نہ کیا کرو, اور زیادتی والی سرگوشیاں نہ کیا کرو, اور معصیت رسول والی سرگوشیاں نہ کیا کرو, بلکہ تناجاؤ بالبر والتقوی, نیکی اور تقوی والی باتوں کی سرگوشی کر لیا کرو آپس میں. واتقوا اللہ, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو, الذی الیہ تحشرون, کہ جس کی طرف تمہیں لوٹ کر کے جانا ہے, جمع ہو کر کے جانا ہے قیامت کے دن. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو یعنی ہے نا کہ بھائی ایسی سرگوشی نہ کرنا جیسی سرگوشی وہ لوگ کیا کرتے ہیں, کیونکہ وہ لوگ تو منافقین ہیں, کافرین ہیں. ٹھیک ہے, تو تم ان کی جیسی سرگوشی نہ کرنا, بلکہ ڈفرنٹ ٹائپ کی سرگوشی کرنا جو کہ تمہارے لیے مناسب ہے کیونکہ تم ایمان والے ہو. ٹھیک ہے, آگے فرماتے ہیں کہ اب یہ جو ہے نا کہ تفسیر ان الفاظ کی بھی ابھی گزری ہے, اور نفر آسانی اور پرہیزگاری کی باتوں کی سرگوشی کرو. بر اور عدوان, اچھا بر کا جو لفظ ہے, بر کہتے ہیں نیکی کو, تو یہ عدوان کا مقابل ہے, کیونکہ وہ لوگ عدوان کی سرگوشی کرتے تھے. عدوان میننگ زیادتی, یعنی اذیت پہنچانا. ٹھیک ہے, کسی انسان کو اذیت پہنچانا, اور وہ بھی مسلمان کو, ایمان والے کو. ٹھیک ہے, برائی کی نیت سے اس کو تکلیف دینا, تو یہ زیادتی کہلاتا ہے, یعنی حد سے گزری ہوئی چیز. اسی وجہ سے اس کے لیے عدوان کا لفظ استعمال ہوا. ٹھیک ہے, تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کے اگینسٹ کیا لفظ استعمال کیا ہے, بر کا لفظ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے, کہ बिर जो होती है ना वो ऐसी नेकी होती है कि जिससे करने वाले को भी फायदा पहुंचता है, ठीक है ना, और नेकी का असर जो है ना फिर दूसरों तक भी पहुंचता है, ठीक है। तो ये उद्वान का मद्द मुकाबल हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर बिर के बाद तकवा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो तकवा किसके अगेंस्ट इस्तेमाल किया, इस्म और मासियत रसूल, यानी रसूल की नाफरमानी का ये मुकाबल है, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी ही जो है वो गुनाह कहलाता है, और इसी के लिए इस्म का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो कभी एक ही बात को एक्सप्लेन करने के लिए जो मुख्तलिफ एक से ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इससे जो है वो एम्फेसाइज करना मकसूद होता है, ठीक है। तो इस्म और मासियत रसूल दो लफ्ज इस्तेमाल किए, मतलब तो बेसिकली दोनों का एक ही बनता है, क्योंकि अल्लाह ताला का तो कोई हुक्म नहीं आता ना, जो भी हुक्म आता है वो नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से आता है, ठीक है। तो जो भी नाफरमानी करेंगे, जो भी गुनाह करेंगे, वो एक्चुअली तो नबी अलैहिस्सलाम की ही नाफरमानी होगी, ठीक है, लेकिन उनको डिस्क्राइब करने के लिए इस्म का लफ्ज अलग इस्तेमाल किया कि जिसमें कि अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो इस्म जो है वो अल्लाह के जो अहकाम नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरह से बयान फरमाए कि ये अल्लाह का हुक्म है, ठीक है, कि पांच वक्त नमाज पढ़ो, ये नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म तो नहीं था ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि अल्लाह का हुक्म है, कि इसकी अगर नाफरमानी करोगे तो वो इस्म का अंदर, जैसे कि आगे बात आ रही है कि भाई मजलिस के अंदर बैठे हुए हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को उठने के लिए कह दिया, तो अगर कोई नहीं उठा तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कहलाएगी, ठीक है, इसलिए कि मजलिस से उठने के लिए जो हुक्म था वो अल्लाह ताला का बराह रास्त हुक्म नहीं था ना, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का हुक्म कहलाएगा, तो वो मासियत रसूल कहला जाएगी, ठीक है। बहरहाल तकवा जो है वो इन दोनों के मुकाबल इस्तेमाल किया। अच्छा, और अल्लाह से डरो कि जिसके पास तुम सब जमा किए जाओगे, ऐसी सरगोशी महज शैतान की तरफ से, यानी उसके बहकाने से है, ताकि मुसलमानों को रंज में डाले, ठीक है, मुसलमानों को रंज में डाले। अच्छा, और आगे इन मुसलमानों की, जैसा वाक़ अव्वल में बयान हुआ, और आगे इन मुसलमानों की तसल्ली है कि रंजीदा ना हुआ करें, क्योंकि वो शैतान, यानी ये जो शैतान है, बिदून खुदा के इरादे के इन मुसलमानों को कुछ ज़रर नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। बड़ा ये अहम पॉइंट है, वैसे इसके ऊपर इंशाल्लाह अभी बात करते हैं, कि मतलब ये है कि अगर बिलफर्ज वो शैतान के बहकाने से तुम्हारे खिलाफ ही कोई तदबीर कर रहे हैं, तब भी वो जरर बगैर मशियत अजलिया के तुमको नहीं पहुंच सकता, फिर क्यों फिक्र में पड़ते हो, ठीक है। यानी एक तो ये है ना, ऐसे ही कान में जाकर के ना वो फूके मार रहे थे, खाली खुसर फुसर कर रहे थे, बाकायदा कोई यानी नुकसान की प्लानिंग नहीं कर रहे थे, बस ऐसे ही शो ऑफ कर रहे थे कि जिसको देख करके मुसलमानों के दिल में कुछ होने लगे, परेशान होने लगे, ठीक है। तो अगर वो खाली शो ऑफ कर रहे हैं तुम्हें परेशान करने के लिए, या अगर वो बाकायदा कोई ऐसा मंसूबा भी बना रहे हैं एक दूसरे के साथ सरगोशी करके कि ताकि तुम्हें नुकसान पहुंचाएं, फिर भी वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक कि अल्लाह ताला का फैसला ना हो। क्या मतलब, नुकसान तो तुम्हें पहुंच सकता है, लेकिन उसी वक्त पहुंचेगा जब अल्लाह ताला का फैसला होगा तुम्हें नुकसान पहुंचने का, तुम फिक्र ना करो। क्या मतलब फिक्र ना करो, कि तुम उनकी मौजूदगी की वजह से और उनकी हरकतों की वजह से फिक्र ना करो, ठीक है, तुम उनके मौजूद होने की वजह से और उनकी इन हरकतों की वजह से तुम फिक्र में मुब्तला ना हो, ठीक है। अगर नुकसान पहुंचना ही है तो वो तुम्हारे रब की मर्जी से पहुंचेगा, उसके बगैर नहीं पहुंचेगा, और तुम तो ईमान वाले हो, तो तुम तो अपने रब की मर्जी पर राजी हो, इस बात का तुम इकरार कर चुके हो कि हम अपने रब की मर्जी में राजी हैं। तो अगर तुम्हें नुकसान पहुंचा भी तो वो तो तुम्हारे रब की मर्जी से पहुंचेगा, तो उस पर फिक्र करने की क्या जरूरत है, उस पर फिक्र करने की क्या जरूरत है, राइट? कोई शैतान तुम्हें नुकसान को थोड़ी पहुंचा सकता है। ये काफिर, ये मुशरिक, ये मुनाफिक, ये हिंदू, ये ईसाई, ये कोई थोड़ी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है भाई? तुम तो मेरे महबूब के आशिक हो, तुम मेरे महबूब से मोहब्बत करने वाले हो, तुम मेरे महबूब के दोस्त हो, साहिब हो, ठीक है? तो तुमने तो अपनी जिंदगी को महबूब के अतात के अंदर गुम कर दिया है, तो अब अल्लाह की नाराजगी का तो मसला ही कोई नहीं है तुम्हारे साथ, है ना? यहां पर तो कोई अल्लाह की नाराजगी वाली बात तो है ही नहीं, यहां पर तो सारे ईमान वाले जो है ना, उनको अल्लाह ताला जो है ना वो ईमान वाले के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं ना। यहाँ पे कोई ईमान वालों को धमकियां वगैरह की थोड़ी दी जा रही है कि भाई तुम ये करोगे वो करोगे तो ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें तब्दील कर दूंगा वगैरह, राइट? यहाँ पर तो ईमान वालों से बाकायदा एक दोस्ताना खिताब हो रहा है और उनको बस ये बात याद दिलाई जा रही है कि चूंकि तुमने अल्लाह को राजी किया हुआ है ना, अब अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। महज इनकी सरगोशियां या प्लानिंग्स या इनकी मौजूदगी ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हाँ, अगर किसी तुम में से किसी को नुकसान पहुंच गया, जैसे कि हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु को सहाबी रसूल होने के बावजूद तकलीफ पहुंची थी, राइट? और जो सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तालीम देने के लिए 70 सहाबा को रवाना किया था, 70 के 70 को एक छोड़ करके उन्होंने शहीद कर दिया था। तो मुसलमानों को काफिरों से फिजिकल हार्म पहुंचता था, लेकिन ये अल्लाह की मर्जी से पहुंचता था, और ये लोग जो हैं फिर अल्लाह ताला के यहाँ शहादत का मुकाम पा जाते थे और जन्नतुल फिरदौस में उनको मुकाम मिल जाता था, ठीक है? लेकिन ये अल्लाह की मर्जी से होता था जिसके ऊपर ये मुसलमान राजी और खुश हुआ करते थे, ठीक है? ये तो शहादत के लिए तमन्नाएं करते थे, ठीक है? तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ काफिरों की मौजूदगी से जो है ना हमें परेशान नहीं होना चाहिए। आजकल जो हम है ना, ये हमारे अंदर जो वहन बैठ गया है ना, वहन, ठीक है, एक ऐसा खौफ बैठ गया है कि किसी क्लास के अंदर, तफसीरी की क्लास थी, तो उसके अंदर इसी तरह की हम बात कर रहे थे कि भाई हम पाकिस्तान इंडिया के जो मुसलमान हैं वो समझते हैं कि जी जादू सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के अंदर होता है, और ना तो अरबों में जादू होता है और ना जो है वो यूरोप अमेरिका में जादू होता है, वो लोग तो सारे के सारे पाकबाज हैं, जादू से बिल्कुल ही कोई ताल्लुक नहीं है उनका, ठीक है ना? इस किस्म के यानी मामलात हैं हमारे, ठीक है? तो जब हमने जरा इस तरह की दो चार मरतबा बात कर दी ना, तो कोई खातून थी बेचारी, वो इंडिया में बैठी हुई थी, ठीक है, तो उनसे रहा ना गया, उन्होंने कहा जी जरा मुल्कों के नाम ना लीजिए, ठीक है, मुल्कों के नाम ना लीजिए, ठीक है? तो फिर मैंने कहा भाई ये यानी आपका क्या ख्याल है कि ये जो हम क्लास कर रहे हैं, ये क्लास बैठे वो लोग सुन रहे हैं, ठीक है ना, जो आपके पड़ोस में रहते हैं, ठीक है, वो सुन रहे हैं, और जहाँ जो है वो फलाने मुल्क का नाम आ गया तो आपको आकर के वो अरेस्ट कर लेंगे, ठीक है, आपको जो है वो बंद कर देंगे, आपको जो है वो परेशान करना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो इतना भी जो है ना वो अपने सर पे सवार करने की जरूरत नहीं है इन काफिरों को, ठीक है ना? इतना भी जो है ना उनके ख्यालात को, उनके खौफ को अपने ऊपर मुसल्लत करने की जरूरत नहीं है कि हम हर चीज वो सुन रहे हैं, राइट? उन्होंने हमारे फोनों को टैप किया हुआ है, वो हमारी ईमेल्स जो है वो चेक कर रहे हैं, वो हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस चेक कर रहे हैं, और अगर उसके अंदर कोई ऐसा लफ्ज आ गया जो कि उनको अच्छा नहीं लगता है, तो उस लफ्ज के बाद फिर वो हमें आके पकड़ लेंगे, हमें गिरफ्तार कर लेंगे, राइट? और हमें जो है वो तकलीफ पहुंचाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना? ये ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता, ठीक है? तो एहतियात जो है ना वो एक दर्जे तक करनी होती है, उससे ज्यादा एहतियात जो होती है ना वो एक नफ्सियाती मसला बन जाती है, ठीक है ना? तो उसके बाद फिर उन खातून को समझाया, जो क्लास के अंदर सारी खवातीन थी, उनको समझाया कि देखें काफिरों की मौजूदगी, दुश्मनों की मौजूदगी, ये गारंटी नहीं है कि आपको तकलीफ पहुंचेगी या वो तकलीफ पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना? आज सुबह ही ये बात हो रही थी, अल्लाह ताला ने अभी रात को ये आयत भी सामने रख दी, ठीक है, कि भाई ये जो मौजूद है तुम्हारे चारों तरफ, तुम्हारे दुश्मन काफिर, ठीक है, इनकी मौजूदगी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ठीक है? अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान की वजह से, तुम्हारे सुन्नत वाली जिंदगी یہ جو سنت والی زندگی ہوتی ہے نا, یہ حفاظت کا سبب بنتی ہے کافروں سے, دشمنوں سے. ٹھیک ہے, یہ سنت والی زندگی یہ روب کا سبب بنتی ہے, خالی حفاظت کا بھی سبب نہیں بنتی. ٹھیک ہے نا, کہ وہ جو ہے وہ آپ سے یعنی آپ کے اوپر چڑھ دوڑ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے اوپر چڑھنے نہیں دے رہے. نہیں, صرف حفاظت کا سبب نہیں بنتی بلکہ سنت والی زندگی کافروں کے اوپر روب کا سبب بنتی ہے. ٹھیک ہے, تو صرف موجودگی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں, ہرگز نہیں. پھر اس کے بعد مثالیں دے کر کے سمجھایا کہ مثال کے طور پر جنات, رائٹ, یہ جنات جو ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں اور ان کے دل کے اندر ہمارا بغض کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ہماری یعنی یہ جو کافر جنات ہیں ان کی بات ہو رہی ہے, یہ ہماری بھلائی برداشت ہی نہیں کر سکتے, ہماری خیر برداشت ہی نہیں کر سکتے. تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ جن جو ہیں وہ کہیں چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں دور دنیا کے کسی کونے کے اندر ہوتے ہیں؟ نہیں, یہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, رائٹ. یہ صرف باتھ روموں میں بھی موجود نہیں ہوتے, باتھ روموں میں تو ہوتے ہیں جب بھی تو اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث پڑھ کر کے جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ گھر میں بھی موجود ہوتے ہیں, جب آپ بسم اللہ پڑھے بغیر کوئی نوالا منہ میں ڈالتے ہیں تو جن اس کھانے کے اندر شامل ہو جاتا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, رائٹ. تو بھائی جن آپ کے ڈائننگ ٹیبل پہ موجود تھا تبھی تو بسم اللہ کے بغیر پڑھے ہوئے کھانے کے اندر شامل ہوا, اگر موجود ہی نہیں ہوتا وہ جن تو کیسے شامل ہوتا. ٹھیک ہے, تو جنوں کی موجودگی ہے ہر جگہ پر, مسنون دعائیں پڑھ لیتے ہیں تب آپ ان سے محفوظ ہو جاتے ہیں. صرف دعائیں پڑھنا نہیں خالی, بلکہ اگر مسنون زندگی بھی گزارتے ہیں تو اس سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان جنوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو موجودگی نقصان کا سبب نہیں بنتی, پڑوس میں ہونا نقصان کا سبب نہیں بنتا, بلکہ نقصان کا کاز کیا بنتا ہے, اللہ کا اپنی حفاظت کو اٹھا لینا, یہ کاز بنتا ہے نقصان کا. اس کی دوسری مثال وائرسز اینڈ بیکٹیریا, رائٹ. وائرسز اینڈ بیکٹیریا یہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, رائٹ, یہ فضا میں موجود ہوتے ہیں, یہ ایٹموسفیئر میں موجود ہوتے ہیں. تو کیا آپ کو ہر وقت بیماری ہوتی رہتی ہے؟ یا یہ کہ بچوں کو وائرل انفیکشن, ٹھیک ہے نا بھائی, ہاں بھائی اس فلاں نے بچوں کو ہمارے وائرل انفیکشن ہو گیا, تو یہ وائرل انفیکشن کا کیا خیال ہے؟ یہ کیا ایک وائرس صاحب آئے تھے اڑتے ہوئے کہیں سے اور وہ آپ کے بچے کے اندر چلے گئے, اس وجہ سے ان کو وائرل انفیکشن ہو گیا؟ بھائی وائرسز تو موجود ہیں اس وقت, رائٹ, سارے بچے جو ہیں وہ ایکسپوزڈ ہیں وائرسز سے, لیکن انفیکشن کس کو ہوا؟ صرف ایک کو ہوا. بھائی اگر وائرسز کی موجودگی لازمی طور پر نقصان کا سبب بننی تھی تو سارے بچوں کو ہونا چاہیے تھا, بلکہ بڑوں کو بھی ہونا چاہیے تھا, ایک کو کیوں ہوا, سب کو کیوں نہیں ہوا, حالانکہ موجود تو سب تھے وائرسز کی پریزنس کے اندر, رائٹ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق صرف ایک کو یہ انفیکشن ہونا تھا, باقی کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. کہنے کا سارا مقصد یہ ہے کہ صرف موجودگی سے مروب نہیں ہونا چاہیے ہمیں, ٹھیک ہے نا. اور ہمارا کیا حال ہے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم اتنے مروب ہیں کہ اگر کبھی امریکہ چلے جائیں نا تو شلوار قمیض پہننا تو ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر شلوار قمیض پہنی نا سارے ڈنڈا لے کر کے آئیں گے اور ہمیں مارنا شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. عورتیں برقع پہن کر کے امریکہ, او ہو برقع امریکہ میں کیسے ہو سکتا ہے جی, تو سعودی عرب سے برقع پہن کر کے جہاز میں سوار ہوتی ہیں, وہاں پہ جا کر کے آہستہ آہستہ وہ اترنا شروع ہوتا ہے, جتنا زیادہ قریب جاتے ہیں نا اتنا وہ برقع اترنا شروع ہوتا ہے, حتیٰ کہ ایئرپورٹ پہ پہنچ کر کے سب کچھ ہی اتر جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیوں بھائی, اگر آپ یہاں برقع پہن رہی ہیں اللہ کی وجہ سے تو اللہ تو امریکہ میں بھی ہے, اللہ تو یورپ میں بھی ہے, وہاں پہ جا کر کے برقع کیسے اتر گیا؟ تو اس سے پتہ لگتا ہے نا کہ اصل میں یہ برقع جو ہے وہ اللہ کے لیے تھا ہی نہیں, یہ برقع تو سعودی عرب کی وجہ سے تھا, یا یہ برقع تو کسی فیملی ممبر کے خوف کی وجہ سے تھا, اللہ کے خوف سے تو یہ تھا ہی نہیں. اگر اللہ کے خوف سے ہوتا تو امریکہ میں کیسے اتر جاتا؟ ٹھیک ہے نا, اگر یہ جو آپ نے سنت لباس پہنا ہوا ہے, جبا اور شلوار, ٹھیک ہے نا, اور ٹوپی جو آپ نے پہنی ہوئی ہے, اگر آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کے لیے پہنی ہوئی ہے تو امریکہ جا کر کے اتنا جلدی یہ ٹوپی کیسے اتر جاتی ہے؟ ٹھیک ہے نا, وہ پینٹ شرٹ میں کیوں آ جاتے ہیں؟ حالانکہ داڑھی تو شیو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا نا, پھر وہ اگنے میں وہ جو ہے بہت ٹائم لگے گا, तो दाढ़ी नहीं काटते लेकिन पैंट शर्ट फौरन पहन लेते हैं, राइट? तो क्या है ये रोब? अच्छा, ये तो हमारी जनरेशन का हाल है, हमसे पिछली जो जनरेशन थी उसका तो हाल इससे भी ज्यादा बुरा कि वहां जाकर के उर्दू बोलना ऐसे लगता था कि जैसे उर्दू बोलना उधर से पुलिस आ जाएगी, पकड़ के ले जाएगी, है ना? वहां पे जाकर के अंग्रेजी आती हो या ना आती हो, बस अंग्रेजी ही बोलनी है। उर्दू बोलना भी एक खौफ का सबब होता था, उर्दू कोई ना सुन ले हमसे, लोग समझेंगे पता नहीं हमारे बारे में कुछ बातें कर रहे हैं, राइट? ये कोई किसी और दुनिया की मखलूक आ गई है, पकड़ के ले जाएंगे सारे के सारे हमें। इतना वहन अल्लाह ताला ने हमारे दिनों के अंदर बिठा दिया है। और इसकी वजह क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत। दुनिया की मोहब्बत, अमरीका की मोहब्बत, यूरोप की मोहब्बत, वहां के मालो पैसे की मोहब्बत, राइट, वहां के स्टेटस ऑफ लिविंग की मोहब्बत, ये मोहब्बत है जिसकी वजह से हम अपने आप से नफरत करते हैं, अपनी जुबान से नफरत करते हैं। पाकिस्तान में 35 साल भी एक नौजवान अगर रहता है ना, अमेरिका जाकर के उर्दू ऐसा छोड़ता है कि जैसे उसको उर्दू बोलनी नहीं आती। बीवी भी घर पाकिस्तान में पली बड़ी है, 30 साल पाकिस्तान में रही है, लड़का भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही सारी जिंदगी रहे, वहां पे जाकर के जब इनके बच्चे होते हैं, अब इनके बच्चों को उर्दू आती है नहीं है क्योंकि घर के अंदर भी मियां बीवी जो है वो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, बच्चे से भी अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। ये क्यों है इतनी नफरत? ये गुनाह की सजा होती है, ये गुनाह की सजा है कि उर्दू से नफरत करते हैं, पाकिस्तानी लिबास से नफरत करते हैं। तो ठीक है, और उसके ऊपर फिर जाहिर है ये बात जो खाली हमें तो नहीं समझ में आती है, नहीं तो और भी लोगों को समझ में आती है। तो इस वजह से कुछ लोगों को लट्टू करने के लिए माशाल्लाह लिबास के जरिए से लट्टू कर लेते हैं, ठीक है ना? वो फिर एक अलग मसला है जो कि आज के दौर का एक नया मसला है जो कि पहले नहीं था, ठीक है? बहरहाल वो एक अलग डिस्कशन है। तो सिर्फ मौजूदगी जो है ना, इसकी वजह से इतना खौफजदा नहीं होकर कि हर वक्त सुनते रहते हैं, हमारा फोन भी सुन रहे हैं, हमारा व्हाट्सएप भी देख रहे हैं हमारा, और वो पीछे पड़े हुए हैं, राइट? पहली बात, इतने फारिग नहीं होते हैं ये लोग, इतने ज्यादा फारिग नहीं होते, ठीक है? इतना भी उनको जो है ना वो यानी, बल्कि उनको तो क्या, इतना अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, ठीक है ना? ये भी याद रखें, ये भी एक रुख है देखने का, अपने आप को भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए कि इनके पास और कोई काम नहीं है करने को और ये सारी इनकी तवज्जो हमारे ऊपर है, ठीक है ना? ये भी एक खुद पसंदी की इंतहा है कि अपने आप को दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ रहे हैं, उनके पास बैठ करके हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस देखे चले जा रहे हैं, देखे चले जा रहे हैं, ठीक है? अरे भाई, अल्लाह ताला को मनाने की क्यों नहीं फिक्र करते, राइट? अल्लाह ताला की नाराजगी जो हमने मोल ली हुई है अपने गुनाहों की वजह से, अपनी ज्यादतियों की वजह से, जो कि हम अपने घर के अफराद के ऊपर करते हैं, अपनी बीवियों के ऊपर करते हैं, राइट? या अपने रिश्तेदारों को जो हम तकलीफ पहुंचाते हैं, अजियत पहुंचाते हैं, इससे तौबा क्यों नहीं कर लेते ताकि अल्लाह ताला उनकी अजियत से हमें महफूज रखे, राइट? उन यानी हम अपनी अजियत पहुंचाने को खत्म नहीं करेंगे। हाँ, हिंदू हमें अजियत ना पहुंचाए कभी, राइट? कोई अमरीकी जो है वो हमें कुछ बुरा भला ना कह दे कभी भी, वो हमें कुछ ना कहे कभी भी, राइट? लेकिन मैं जिसको अजियत पहुंचा रहा हूं, मैं जिसको तकलीफ पहुंचा रहा हूं, रूहानी हो या जिस्मानी हो या माली हो या मादी हो, जिस किस्म की अजियत हो, मैं पहुंचाता रहूंगा। तो भाई, आप जब पहुंचाते रहेंगे ना, तो फिर उधर से अजियत के लिए भी तैयार रहना चाहिए, ठीक है? तो अब इस अजियत पहुंचाने को बंद कर दें, खत्म कर दें, तौबा कर लें इससे। तो अल्लाह ताला ये जो वहन आपके दिल के अंदर पड़ा हुआ है ना, इस वहन को भी फिर निकाल देगा, ठीक है? तो ये एक अलग अंदाज होता है जो कुरानी अंदाज होता है। अल्लाह ताला यहाँ पे हमें वही बात समझा रहे हैं कि तुम इस फिक्र में ना पड़ो, ये इनकी सरगोशियां तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तुम सुन्नत वाली जिंदगी इख्तियार करो, मैं अपनी हिफाजत का हल्का तुम्हारे गिर्द हमेशा रखूंगा, और अगर मेरी हिकमत होगी तुम्हें मैंने जरा जल्दी जन्नत में पहुंचाना होगा, राइट? और जन्नत के अंदर ज्यादा बड़े दर्जात देने होंगे, तो कभी तुम्हारे ऊपर से ये हट भी सकता है, ठीक है? तो वो मेरी मर्जी होगी और तुम तो फिर मेरी मर्जी के अंदर राजी होगे, तुम्हारे अंदर से मैं वहन निकाल चुका हूंगा, ठीक है? तो तुम फिर मेरी इस बात के ऊपर फिर तुम्हें कोई मसला नहीं होगा, ठीक है? आई विल टेक वेरी गुड केयर ऑफ यू, ठीक है? तो फरमाया कि मजलिस में, अच्छा, अब ये जो आगे मजलिस वगैरह की बात शुरू हो रही है, तो वो फिर हम इंशाल्लाह अगले क्लास में कर लेते हैं, अगली क्लास पर रखते हैं। तो अगर आप मुझे कोई सवाल पूछना चाहें तो प्लीज़ पूछ लीजिए। इनके जो जिन और शयातीन वाला सवाल है ना, इसको तुम्हें जवाब देने के समझ नहीं आ रहा। जिन और खबीस एक ही मखलूक है क्या? आप में से अगर कोई जवाब दे दे तो ज्यादा मुनासिब होगा। जिन या जिन और खबीस एक ही मखलूक है क्या? ये तो एक सवाल है, प्राइवेटली लिखा है तो इस वजह से मैंने पढ़ के सुना दिया। दूसरा सवाल तो लिखा हुआ है सामने, लिख करके जवाब दें। वैसे इस क्लास में ये अनम्यूट हो गया, उन्हीं की सिफत है। नहीं, इतना तो आप लोगों ने पिक किया होगा क्लासेस के अंदर। शयातीन किन को कहते हैं, शैतान किन को कहते हैं, ये किस शैतान का मतलब क्या होता है? शैतान का जो लफ्ज है ना, ये सरकश। जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, जज़ाकुमुल्लाह। ठीक है, सरकश जो भी हो जाए उसको शैतान कहते हैं। ठीक है ना, अब कोई घोड़ा सरकश हो जाए तो उस घोड़े के लिए भी शैतान का लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इसी वजह से ना बच्चों को भी कुछ लोग जो शैतान बोलते हैं ना, उसकी रीजन एक्चुअली यही होती है। कहना नहीं चाहिए बच्चों को, इसलिए कि बच्चे जो हैं वो मासूम होते हैं, वो अगर बुराई कर रहे हैं तो आपने उनको बुराई सिखाई होगी, उन्होंने कहीं से सीखी होगी, आपने उसका इंतजाम नहीं किया तरबियत का, तो इस वजह से वो सरकश हो गए। ठीक है, तो उनको बोलना नहीं चाहिए, उनकी इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, तो जो भी सरकश हो, अगर वो इंसान सरकश हो जाता है तो उसको भी शैतान कहते हैं, और जिन सरकश हो जाता है तो उसको भी शैतान कहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जिन्नों के अंदर दो किस्म के होते हैं, जैसे इंसानों में दो किस्म के लोग होते हैं, नेक और बद, उसी तरह से जिन्नों के अंदर भी नेक जिन भी होते हैं और बुरे जिन भी होते हैं। जो बुरे जिन होते हैं ना, तो उनके लिए शैतान का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बुरे जिनों के लिए शैतान का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और जी, खबीस जिन और इंसान दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल सही, इंस वल जिन। जी ठीक है, ये बात मुकम्मल हो गई। ठीक है, जज़ाकुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।